सरगा दधी माधवा, सब लोग बोले एक बार, तन्नी सरगा दधी माधवा। हाँ, अब इसके माध्यम से क्या बता रहे हैं, तत् निसर्गात अधिगमात वा। संस्कृत के जो सूत्र होते हैं, सूत्र पूरे अच्छे से पढ़े जाते हैं, उसके बाद जब अर्थ करते हैं तो उसकी एक एक विभक्ति को अलग अलग करके और उसका अर्थ करते हैं। तत् माने वह सम्यक दर्शन, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम। दूसरा सूत्र कहा कि तत्व और पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। उसके बाद कहा तन् निसर्गा दधि अमाद्वा, मैंने बार बार सम्यक दर्शन शब्द को यूज नहीं किया, अब तत् शब्द से ये बताया कि वो सम्यक दर्शन जिसका लिंक चला आ रहा है, वह सम्यक दर्शन दो प्रकार का है, निसर्गस और अधिगमज। तो यहाँ पर उस सूत्र को आचार्य उमा स्वामी के सूत्र को लिया और उस सूत्र पर जिन्होंने टीका लिखी, तत्वात् राजवार्तिक अकलंक देव, स्वामी अकलंक देव बहुत बड़े, जो अकलंक और निकलंक की कहानियां आप पढ़ते हैं उनमें से ही बड़े भाई का नाम अकलंक था, और निकलंक ने उनको सुरक्षित रखने के लिए अपना बलिदान दे दिया था। उन अकलंक देव ने स्वयं अपने बुद्धि के द्वारा और अपने भाई के बलिदान को सार्थक करने के लिए उन्होंने खूब जिन शासन की प्रभावना अपने ज्ञान के द्वारा किया है, उसी के अंतर्गत उन्होंने तत्वार्थ राजवार्तिक नाम के ग्रंथ को लिखा, आचार्य उमा स्वामी के द्वारा रचित सूत्रों पर टीका लिखी, उसी का नाम पड़ा तत्वार्थ राजवार्तिक। उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि सम्यक दर्शन द्वैविध्य कल्पना अनुपपत्ति अनुपलब्ध तत्वस्य श्रद्धानाभावात् रसायनवत्। यानी कि जब ये बताया गया कि सम्यक दर्शन दो प्रकार से उत्पन्न होता है, एक निसर्गता माने स्वभाव से और एक अधिगमज माने पर के उपदेश से, ये दो प्रकार से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। एक तो क्या है कि पैदा हुए और पूर्व भाव के संस्कार काम आए और सम्यक दर्शन हो गया, और एक है कि जन्म से सम्यक दर्शन को नहीं जाना, मिथ्यात्व की ओर चलते चले गए, गुरु ने उपदेश दिया या हमने शास्त्र को पढ़ा तो सम्यक दर्शन हो गया, तो ये कहलाता अधिगमन। तो दो प्रकार से सम्यक दर्शन को उत्पन्न होना माना है। तो एक प्रश्न हो गया कि सम्यक दर्शन में दो प्रकार की कल्पना नहीं बन सकती, क्योंकि तत्वों का ज्ञान हुए बिना उनका श्रद्धान कैसे हो सकता है। जैसे कि जब तक रसायन का ज्ञान ना हो तब तक उसका श्रद्धान असंभव है, अतः निसर्ग सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हो सकता। समझे ना, ये शंका की कि भाई अगर किसी मेडिसिन का हमें नाम और उसका काम नहीं पता है तो क्या करें, बुखार की दवाई का अगर क्रोसिन लेने से बुखार जाता है, ये श्रद्धान है तभी तो क्रोसिन लेंगे बुखार आएगा। तो कह रहे हैं कि जब ऐसे रसायन माने वैद्य की दृष्टि से बता रहे हैं कि किसी दवाई को उसका काम जाने बिना उसका श्रद्धान असंभव है, उसी प्रकार से जब तक हम नहीं जानेंगे तत्व और पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है तो हम सम्यक दर्शन को नहीं पा सकते। तो निसर्गज को तो हटा दो, केवल अधिगमज को रखो, क्योंकि जब उपदेश मिलेगा तभी हम सम्यक दर्शन ग्रहण करेंगे। तो पुनः वही उत्तर देते हैं, किसी शिष्य ने ऐसा प्रश्न कर दिया कि निसर्ग सम्यक दर्शन नहीं होना चाहिए, अधिगमज ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग गुरुओं के उपदेश से ही तो जान सकते हैं ये अच्छा है ये बुरा है, तभी उस पर श्रद्धान करेंगे, तो निसर्ग सम्यक दर्शन नहीं होना चाहिए। तब आचार्य देव ने अकलंक देव ने उत्तर दिया कि दोनों सम्यक दर्शन में अंतरंग कारण दर्शन मोका उपशम क्षय या क्षयोपशम समान है। अंतरंग और बहिरंग कारण दो दिए थे, अंतरंग में दर्शन मोहिनी कर्म जब दब जाएगी उपशमन हो जाएगा, क्षय हो जाएगा या क्षयोपशम होगा तब सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा। तो इसके होने पर जो बाह्य उपदेश के बिना प्रकट होता है वह निसर्गज कहलाता है, तथा जो परोपदेश से होता है वो अधिगमज कहलाता है। लोक में भी शेर भेड़िया चीता में सूरता क्रूरता आदि परोपदेश के बिना होने से नैसर्गिक कहे जाते हैं। यद्यपि इनमें कर्मोदय की अपेक्षा है, फिर भी परोपदेश की अपेक्षा न होने से ही ये स्वाभाविक है। वैसे ही यहाँ पर भी सम्यक दर्शन में परोपदेश की अपेक्षा न होने पर ही निसर्गता स्वीकार की गई है। बड़ा सरल विषय है कि शेर चीते पैदा हुए अपने आप भागने लग जाते हैं। उनकी माँ सिखाती नहीं है कि आप भागना शुरू करो, ये उनका स्वभाव है। तो इसी प्रकार से अगर कोई सम्यक दर्शन पैदा होते ही पूर्व जन्म में किसी चीज को हमने पढ़ा लिखा था, समझो कि बहुत अच्छा स्वाध्याय किया था, और पैदा होते ही 8 साल की उम्र के बाद वो चीजें हमें समझ में आने लग गई, तो वो निसर्ग सम्यक दर्शन कहा जाता है। क्यों? उसमें हमने किसी गुरु से नहीं जाना, हमारे पूर्वों की जाति स्मरण की बातें याद आने से, और इसमें कर्म का उदय है जो निसर्ग सम्यक दर्शन हुआ। फिर भी परोपदेश की अपेक्षा ना होने से ये निसर्गज कहलाता। तो कह रहे निसर्गज और अधिगमत दोनों चीजें हैं, दोनों में से हम किसी को भी हटा नहीं सकते। स्वभाव से भी हो सकता है, उपदेश से भी हो सकता है। जो स्वभाव से होगा वो निसर्गज कहलाएगा, और जो उपदेश से होगा वो अधिगमत कहलाएगा। अब आप सबको सम्यक दर्शन है, समझ लो कि हमें सच्चे देव साथ गुरु पर श्रद्धान है तो सम्यक दर्शन है। आप में से कोई मिथ्या दृष्टि है क्या? नहीं ना। हाँ, अपने को मिथ्या दृष्टि कभी मत कहना। एक बार एक विद्वान ने कह दिया सभा के अंदर, पता नहीं हम सम्यक दृष्टि हैं कि मिथ्या दृष्टि। इसका मतलब क्या हुआ? तो आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। विश्वास रखना कि अगर हम देव साथ गुरु के भक्त हैं, हम भगवान की भक्ति करते हैं, हम गुरुओं के उपदेश को सुनने जाते हैं, हम शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, श्रावक के 6 कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो नियम से सम्यक दर्शन है। सम्यक दृष्टि के कोई सींग पूंछ नहीं उगता, उनके कोई लेबल नहीं लगा होता कि हम लेबल लगा दें, कोई ब्रांड लगा दें। ब्रांड है केवल देव साथ गुरु की भक्ति करना, और अगर आप यही करते हैं तो आप ब्रांडेड सम्यक दृष्टि हैं। समझे देवेंद्र जी? आप ब्रांडेड सम्यक दृष्टि हैं। तो यहाँ तक के ही प्रकरण को आज हम लेंगे, और अब प्रतिदिन स्वाध्याय चलेगा। सम्यक दृष्टियों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि आज जैसे हमारे यहाँ दीक्षाएं हुई हैं, ऐसे अनेक संघों के अंदर भी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों की संख्या, दीक्षार्थियों की संख्या बढ़ती है। इन सब के त्याग की अनुमोदना करते हुए हम अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करते रहें, यही आज के स्वाध्याय का सार है। हमारे बीच में आज